जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय संख्या 11 अध्याय का नाम है पासिंग ऑफ हरिदास ठाकुर श्लोक संख्या प्रयार संख्या 25 लोक निस्तारित है तुम्हारा अवतार नाम महिमा लोके करीला प्रचार लोक निस्तारित है तुम्हारा अवतार नाम महिमा लोक करीला प्रचार लोक निस्तारित है तुम्हारा अवतार नाम महिमा लोके करीला प्रचार वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड पर्वर बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की लोक निस्तारित जन साधारण का उद्धार करने के लिए ए यह तुमार अवतार तुम्हारा अवतार नामेर महिमा हरि नाम की महिमा लोके इस जगत में करीला प्रचार तुमने प्रचार किया। अनुवाद इस अवतार में तुम्हारा कार्य जन साधारण का उद्धार करना है और तुमने हरि नाम की महिमा का इस जगत में पूर्ण रूप से प्रचार किया। तात्पर्य हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहे जाते हैं क्योंकि हरिदास ठाकुर ने ही हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को का प्रचार किया। तुमार अवतार शब्द का उपयोग करने से चैतन्य महाप्रभु इसकी पुष्टि करते हैं कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर कहते हैं कि जो भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं वो भगवान के इस मिशन में सहयोग देने के लिए अवतरित होते हैं और ऐसे भक्त और यह भगवान के पार्षद भगवान की इच्छा से आते हैं। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं और उनकी इच्छा से उनके भक्त भी अवतार लेते हैं उनके इस मिशन में सहयोग देने के लिए। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं और दूसरे भक्त भी इसी प्रकार भगवान के इस मिशन में सहयोग देने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल भक्तिनोद ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस था और आज नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। तो इस दिन की हम सब भक्तों के लिए बहुत महिमा है। हरिदास ठाकुर जी का गुणगान स्वयं चैतन्य महाप्रभु किया करते थे और वृंदावनदास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर का गुणगान चैतन्य महाप्रभु करते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनके 100 मुख हों। परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपने भक्त का गुणगान करते थे तो लगता था कि उनके 100 मुख हों। तो मुझ जैसे तुच्छ जीव एक मुख के साथ क्या गुणगान कर सकता है। लेकिन ये गुणगान करना अति आवश्यक है क्योंकि इससे हम सबका शुद्धिकरण होगा। तो सभी वैष्णवों के चरणों में निवेदन करते हुए विशेषकर इस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज से आशीर्वाद की याचना करते हुए कि हम हरिदास ठाकुर जी की महिमा को समझने का प्रयास करें। अपने योग्यता के अनुसार गुणगान करने का प्रयास करेंगे। और इस श्लोक में जैसे इस परियार में बताया गया है अंत्य लीला के, लोक निस्तारिते ही तोमार अवतार, जन साधारण का उद्धार करने के लिए हरिदास ठाकुर अवतार लेते हैं। अवतार शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है स्वयं भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं और वो हम सबका उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। शास्त्रों में हरिदास ठाकुर जी की बहुत महिमा गाई गई है। वृंदावनदास ठाकुर जी हम सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि अगर कोई हरिदास ठाकुर की महिमा बहुत गंभीरता से सुनता है और बहुत विनीत समय से हृदय से सुनता है तो निश्चित रूप से उसको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं और साथ में ही कृष्ण प्रेम इस जीवन में प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही गंभीरता से ध्यान पूर्वक और विनीत भावना से इसका श्रवण करना है। हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य हैं, लेकिन उनका जन्म एक यमन परिवार मुसलमान परिवार में हुआ। जैसे कि प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं, उनका जन्म असुर योनि में हुआ। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, जिनका जन्म बंदर की तरह हुआ, बंदर योनि में। इसी ढंग से हरिदास ठाकुर जी महाभागवत हैं, जिनका जन्म मुसलमान परिवार में होता है। और लेकिन वो इतने शुद्ध हैं कि स्वयं देवता उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं। और यहां तक कि गंगा माँ भी इच्छा रखती है कि हरिदास ठाकुर आकर उनमें स्नान करें। उनको छूना क्या, उनको देखने मात्र से ही जीव एक भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर कोई हरिदास ठाकुर के दर्शन प्राप्त नहीं भी कर पाता, उस व्यक्ति के दर्शन प्राप्त कर ले जिसने हरिदास ठाकुर की शरण ले रखी है, तो उसके दर्शन करने मात्र से ही वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर की इतनी महिमा है। तो बताया गया है यहाँ पे इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं की वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के साथ। ऐसी एक लीला में उन्होंने अघासुर का वध कर दिया था। जब अघासुर का वध, अघासुर इतना भयंकर था कि अघासुर से सारे देवतागण कांपते थे। हालांकि देवताओं के पास अमृत था, फिर वो अघासुर से डरते थे। और भगवान के जो पार्षद थे ग्वाल बाल हंसते हंसते ताली बजाते बजाते अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। उनको मालूम ही था कि कुछ गड़बड़ है, उसके मुख से गंदी बदबू आ रही थी और लग रहा था कि ये कुछ सांप है, लेकिन फिर भी घुस गए। मतलब कृष्ण है, रक्षा कर लेंगे। और देवतागण ऊपर डरे हुए रहते थे, हालांकि उनके पास अमृत भी होता था। तो भगवान ने ग्वाल बालों की रक्षा के लिए अघासुर का वध कर दिया। जब अघासुर का वध होते हुए देखा ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने बोला ये क्या है, अगर ये भगवान है तो देखना पड़ेगा। इतनी आसानी से ऐसे असुर का वध कर दिया, देखें। फिर देखिए कर क्या रहे हैं। अघासुर का वध करने के बाद यमुना के तट पे बैठे हैं, सारे ग्वाल बाल उनको घेर के बैठे हैं और भगवान अपने ही ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं। बोले हमारे नारायण तो ऐसे करते नहीं। अगर ये वास्तव में नारायण है तो कुछ महिमा होती है, उनको भोग अर्पण किया जाता है, आरती की जाती है, और अपने ही ग्वाल बालों के मुख से निकालकर खा रहे हैं। उनको कुछ संदेह हो गया, बोले उनकी शक्ति का कुछ टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बाल और सारे के सारे बछड़ों को चुरा लिया और अपने जगत में, अपने लोक में ले गए। और उसके बाद हम जानते हैं उस लीला में क्या हुआ, भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। जब ब्रह्मा जी वापस आए, देखा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, वापस जाकर देखा, लेकिन वो सारे ग्वाल बाल उनकी गुफा में है। फिर आकर देखते हैं सबके सब वैसे ही चल रहे हैं। फिर भगवान ने उनका मोह और बढ़ाने के लिए क्या किया, सारे के सारे ग्वाल बाल, सारे के सारे बछड़े क्या हो गए, चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताय की। तो सभी के सभी ग्वाल बाल, सभी के सभी बछड़े चतुर्भुज रूप में। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सारे के सारे देवतागण उनकी आरती कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और स्वयं ब्रह्मा जी उनका गुणगान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बिल्कुल पागल हो गए और फिर उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू की। बहुत सुंदर प्रार्थना है भागवत अंग दशम स्कंध के 13वें अध्याय में, और बहुत प्रार्थनाएं की। मुख्य प्रार्थनाओं में ये है कि मेरी स्थिति तो एक किसकी तरह है, झुंझुनू की तरह है, जो रात को बहुत चमकता है लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश के आगे बिल्कुल नगण्य है। इसी ढंग से आपने ही मुझे शक्ति दी जिससे मैं सृष्टि की रचना कर सकूं, लेकिन आपके द्वारा शक्ति प्राप्त करके अपने अहंकार के कारण मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। अब मेरे आपसे ये निवेदन है कि मुझे ब्रजवासियों की तरह इस वृंदावन में जन्म दे दो। हालांकि अगर इसमें योग्य नहीं हूं तो मुझे यहां पर एक घास का तिनका बना दो ताकि मैं ब्रजवासियों के चरणों की धूल को प्राप्त कर सकूं। अगर इतनी भी योग्यता नहीं है तो जो रास्ता वृंदावन में आता है वहां पर मुझे एक धूल का कण बना दो ताकि जो लोग वृंदावन जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं उनकी मैं चरणों की धूल के कण को प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बहुत विनम्र प्रार्थनाएं की। ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं कर रहे थे तो भगवान पर इसका क्या असर हुआ, कृष्ण पर इसका क्या असर हुआ? कृष्ण को लगा है कौन आ गया है। निष्मा चक्री ठाकुर बोलते थे क्या है चार सिर वाला व्यक्ति कहां से आ गया है, क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कहां है कौन है। और ब्रह्मा जी तरह तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं और भगवान बिल्कुल भगवान ने कोई उत्तर भी नहीं दिया। उसको कंसोल भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं गलती होगी माफ कर दी आगे से ध्यान रखना। डांटा भी नहीं, क्या समस्या थी, मैंने तुम्हें तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकट किया, मुझसे परीक्षा ले रहे थे, शर्म नहीं आती है, कुछ नहीं, ना डांटा ना उसको कंसोल किया ना कुछ। आप सोचिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और व्यक्ति चुपचाप बैठा रहे। ब्रह्मा जी का कितना अहंकार को ठेस लगी होगी और ब्रह्मा जी को कितनी पीड़ा हुई। ब्रह्मा जी समझ गए पहले ही मैंने एक अपराध कर दिया, अब मैं बाप खड़ा रहा फालतू में प्रार्थनाएं बोलता रहा, इनकी लीला में और बाधा पड़ेगी। चुपचाप दुखी हृदय के साथ ब्रह्मा जी वापस चले गए और भगवान की लीलाएं चलते रहे। लेकिन ब्रह्मा जी की हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं हुई, उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था, बोले अब क्या करूं। लेकिन भगवान के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया था, ब्रह्मा जी भी मुक्त जीव है, हमारी तरह बद जीव नहीं है, तो उनको तुरंत ज्ञान हुआ कलयुग आने वाला है और कलयुग में भगवान के महावदन्याय गौरांग महाप्रभु अवतरित होने वाले हैं। इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा, मैं तुरंत पृथ्वी पे जाता हूँ और गौरांग महाप्रभु की कृपा के लिए याचना करता हूँ। ब्रह्मा जी तुरंत नवदीप में आ गए और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। इसका वर्णन नवदीप महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी और भक्ति रत्नाकर में नरहरि सरकार भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी आए नवदीप में और नवदीप में आके उन्होंने क्या शुरू कर दिया, गौरांगा 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 गौरांगा। बहुत बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी ने और तभी उनके सामने पीत वन और स्वर्ण वन आगे कौन, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की। तो ब्रह्मा जी ने फिर खूब प्रार्थनाएं की गौरांग महाप्रभु के आगे और बोला कि मैं अपने इस पद के अहंकार में आकर अपने आप को सृष्टि का कर्ता समझ बैठा और आपके प्रति और आपके भक्तों के प्रति बहुत बड़ा मैंने अपराध किया, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। मैं ऐसा कोई पद नहीं चाहता, मैं केवल आपकी शुद्ध भक्ति चाहता हूँ, मैं केवल आपका दिव्य प्रेम चाहता हूँ, कृपया करके मुझे ऐसी स्थिति में डालिए कि मैं आपके शुद्ध भक्तों का संग कर सकूं और आपकी प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा पूर्वक उनसे कहा कि निश्चित रूप से इस कलयुग में मैं अवतरित होने वाला हूं और निश्चित रूप से तुम मेरे पार्षद के रूप में प्रकट होगे और मैं तुम्हारा उपयोग करूंगा भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए। तुम बनोगे हरिदास ठाकुर और नामाचार्य कहलाओगे और तुम्हारा ये अहंकार समाप्त हो जाए इसलिए तुम्हें एक बहुत ही विनम्र परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ेगा, एक यमन परिवार में जन्म लेंगे, लेकिन तुम नाम की महिमा का प्रचार करोगे। और एक और बहुत रहस्यमय बात बताता हूँ, इसी हरि नाम के प्रचार के द्वारा मैं जन साधारण को कृष्ण प्रेम का वितरण करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही गुह्यतम बात है। इसलिए ये जो स्थान नवद्वीप में कैसे क्या जाना जाएगा, अंतरद्वीप के नाम से। अंतरद्वीप का अर्थ है ये बहुत ही सीक्रेट बात भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई। तो इस ढंग से घटना अंतरद्वीप में घटी, इसके बाद भगवान अप्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में। वैसे तो बताया जाता है कि ब्रह्मा हरिदास ठाकुर जी में प्रहलाद महाराज का भी आवेश है और पुराणों में कथा आती है कि एक ऋषि थे ऋचिक ऋषि और उनका पुत्र का नाम भी था ब्रह्मा, और ऋचिक ऋषि ने ही अपने इस पुत्र को श्राप दिया था कि तुम यमन परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। तो प्रेम विलास में कहा गया है कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के कर्ता हैं, प्रहलाद महाराज और ऋचिक ऋषि के पुत्र ब्रह्मा, इन तीनों के अवतार हैं हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से अवतरित होते हैं। हरिदास ठाकुर जी का जन्म यमन परिवार में क्यों हुआ, इसके पीछे ये घटना तो है ही, इसके साथ साथ हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से लगभग 35 वर्ष पूर्व हुआ। इतिहासकार बताते हैं 1451 ईस्वी में हरिदास ठाकुर प्रकट हुए और हरिदास ठाकुर के प्रारंभिक वर्षों की कोई भी सूचना नहीं है किसी भी ग्रंथ में। और उस समय क्या स्थिति थी कि मुसलमानों का राज्य था और वर्णाश्रम स्थिति पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी। हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण थे वो बहुत शोषण कर रहे थे। ब्राह्मण अपने शक्ति को खोना नहीं चाहते थे। ब्राह्मणों के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन उल्टे सीधे रीति रिवाजों के द्वारा वो लोगों का शोषण करते थे, धन कमाते थे, तो वो अपने स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। और लोग जो नीची जाति के लोग थे वो तो या तो मुसलमानों के उनके उनसे जबरदस्ती या तो मुसलमान बन जाते थे, या फिर वो कुछ सुविधाएं प्राप्त हो जाए इसलिए वो मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लेते थे। और जो बाकी बचे कुछ हिंदू लोग थे वो या तो दुर्गा के उपासक बन रहे थे या तांत्रिक बन रहे थे। तो पूरे के पूरे समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। तो भगवान गीता में कहते हैं यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सुजामे हम। जब जब धर्म की वृद्धि होती है धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों का उपयोग करते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी को इस यवन परिवार में भगवान ने जन्म दिया एक ये स्थापित करने के लिए कि ये जो जाति धर्म चल रहा था कि अगर जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है केवल उसी को अधिकार है कि वो अपने आप को शुद्ध कर सके, नहीं, इसका खंडन करने के लिए और ये बताने के लिए कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने यवन परिवार में जन्म दिया। पद्म पुराण में तो ये कहा गया है अगर किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है और वो वैष्णव नहीं है तो उसको देखना भी नहीं चाहिए, उसको छूना भी नहीं चाहिए, वो वास्तव में अनटचेबल है। ब्राह्मण कुल में है लेकिन वैष्णव नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं वरा पुराण में वर्णन आता है कि कलयुग में कौन से लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, असुर होने गए। द्वापर युग में भगवान ने काफी असुरों का वध किया, जो बचे कुछ असुर रह गए तो उनको बोला को बाद में देखूंगा, तो उनको कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। इसका प्रचार आप आगे मत बोलिए, किसी शर्मा जी को पकड़िए अब यहां भी कोई बैठे हो बोले आप पिछले द्वापर युग में आप असुर थे, तो ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझ होना अति आवश्यक है कि जाति से जन्म होने से हम ब्राह्मण नहीं बन जाते। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये जो गलत फहमी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तक चलती रही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब संकीर्तन निकाल रहे थे तो उनपे पथराव हुआ, जब वो वृंदावन गए तो सारे के सारे जात गोस्वामियों ने अपने मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए, केवल एक मंदिर में उनको आज्ञा मिली थी अंदर प्रवेश करने के। कौन सा मंदिर था वो? राधा रमन जी का मंदिर। मतलब कि उस समय तक जो ब्राह्मणों में इतना रोष था कि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा आक्रमण है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने ये जनेऊ डालने की प्रथा शुरू की कि किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा देकर उसमें योग्यता है उसको ब्राह्मण बनाया जा सकता है। तो इस ढंग से इसके विशेष उद्देश्य था कि हरिदास ठाकुर जी का जन्म यवन कुल में हुआ, यवन परिवार में हुआ। तो बताया जाता है कि इनका जन्म चैतन्य महाप्रभु के आगमन से लगभग 35 वर्ष पूर्व हुआ, जैसोर डिस्ट्रिक्ट में जो कि आजकल ईस्ट बंगाल में है, बधुआ नामक गांव था वहां पे इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि प्रारंभ से ही इनके हरिनाम के प्रति रुचि थी और ये हरिनाम लेते थे और ये जल्दी ही बधुआ गांव से एक स्थान पर चले गए जो कहते हैं बेनापोल। अब बेनापोल भी अभी मेघल से ईस्ट बंगाल वहीं पे है, बांग्लादेश में ही है। तो वहां पर ये गुफा में बैठते थे और एकांत स्थान में बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी के जीवन में बहुत बहुत अद्भुत और विस्मयकारी घटनाएं हैं, सबका तो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, कुछ तीन चार घटनाएं लेंगे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, और बहुत रोमांचकारी और बहुत विस्मित करने वाली घटनाएं हैं। तो गुफा में बैठकर और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और उनकी जो प्रसिद्धि विख्याति बढ़ती जा रही थी। और जैसे स्मराट ब्राह्मण का अर्थ है जो जाति ब्राह्मण थे उनको बहुत ईर्ष्या हो रही थी, और ऐसे ही एक जाति ब्राह्मण थे रामचंद्र खान जो कि जमींदार भी थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो सारे के सारे जितने भी नास्तिक शिरोमणि थे, नास्तिकों के राजा चीफ, और प्रभुपाद उनकी तुलना रावण से करते हैं, जिस ढंग से रावण भी एक ब्राह्मण के पुत्र थे लेकिन थे असुर, और ये भी इनका भी जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ लेकिन बहुत द्वेष करते थे वैष्णवों से, तो हरिदास से उनको बहुत द्वेष हो गया। उन्होंने सोचा ये एक सेंटिमेंटल भावुक भक्त है, आत्मन जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे उसको लगता है बोले अभी इसका पतन करवा देता हूं, बहुत ख्याति प्राप्त हो रही है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है और मुझे मालूम है इसकी क्या कमजोरी है, इतनी युवा अवस्था में गुफा में बैठ के जप कर रहा है, अभी इसका पतन करवा देता हूँ। इस शहर की सबसे सुंदर उसने वैश्य को ढूंढा, बोले इसका पतन कराना है। उस वैश्य को भी अपनी सुंदरता में बहुत गर्व था, केवल 3 दिन दीजिए मुझे बस, मैं इसका पतन करा दूंगी। बोले ठीक है, जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा, और अभी अपने साथ मैं पुलिस को भेजता हूँ, जैसे ही तुम दोनों इकट्ठे होंगे पुलिस पकड़ लेगी। वैश्य ने बोला नहीं, एक रात के बाद, दूसरी रात आप पुलिस को भेज देना, एक रात मुझे प्रयास करने दो। बोले ठीक है, ऑल द बेस्ट करके भेज दिया। तो वो वैश्य आती है और हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, और वैश्य बहुत अपने आप को सजा कर सुंदर कपड़े डालकर आती है। सबसे पहले आकर वो क्या करती है, तुलसी महारानी को प्रणाम करती है, फिर हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है। बोले तुम इतने युवा हो, इतने सुंदर हो, सबका उद्धार करते हो, मैं भी युवती हूँ, क्यों नहीं हम संग करें। हरिदास ठाकुर उसे बहुत दया दृष्टि से देखते हैं। बोले निश्चित रूप से मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, कुछ समय दे दो, मेरा जब बचाओ है, थोड़ा मेरा संकल्प है मैं पूरा कर लूं, आप बैठिए यहाँ पर और मैं जब करता हूँ। तो बैठ जाती हैं, परीक्षा करती हैं और तरह तरह की भाव भंगिमाएं दिखाती हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, एकांत स्थान है, बहुत सुंदर युवती है जो कि अपना शरीर अर्पण कर रही है। हरिदास ठाकुर भी युवा है, हरिदास ठाकुर को बहुत सुंदर बताया जाता था, अजान लुम्मत उनको बोलते थे, इनकी भुजाएं उनको घुटने तक पहुंचती थी, और कमल लोचन उनके नेत्र कमल के समान थे, और बहुत ही स्वस्थ थे और बहुत युवा थे। और देखिए, और सब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण रूप से मग्न है, उनको हरे कृष्ण महामंत्र के जप में हायर टेस्ट प्राप्त हो रहा है। वो वैश्य प्रतीक्षा कर रही है और हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रही है, जप कर रही है, करते 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 पूरी रात निकल गई। हरिदास ठाकुर कहते हैं कृपया क्षमा करें, कल आ पाए, कल आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। वो वापस जाती हैं, रामचंद्र खान को बाती हैं, देखते हैं आज कुछ कार्य हो जाएगा। अगले रात को फिर आती है, फिर वो बोलती है कि कृपया मेरा संग करें। हरिदास ठाकुर कहते हैं मुझे क्षमा करना, वास्तव में मैंने संकल्प लिया था कि इस महीने में पूरा 1 करोड़ नाम का जप करूंगा, बस थोड़ा सा रहता है, कृपया करके मेरी प्रतीक्षा कीजिए, ये होते ही मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वैश्य फिर से प्रतीक्षा कर दिया और हरिदास ठाकुर फिर से बहुत गहराई से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, दूसरी रात में निकल जाती है। तीसरी रात वो वैश्य समय से पहले आ जाती है कि आज निश्चित रूप से, जब फिर से हरिदास ठाकुर ये प्रक्रिया करते हैं, लेकिन तीसरी रात तक वैश्य का पूरा हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो उनके आश्रय ग्रहण करती है और बोलती है कि मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था। हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं पहले से ही जानता था कि ये कार्य वो मूर्ख ही कर सकता है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हरिदास ठाकुर ने ट्रांसडेंटल ट्रिक यूज किया। भक्त बहुत चतुर होते हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा आपको देखकर होता मैं पहली रात को ही चला जाता, लेकिन मैं आपका उद्धार करना चाहता था। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से हम सबको ये सिखाना चाहा है कि किस तरह हमें जप करना है। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा दे रहे थे, बोले पूरे वैदिक ज्ञान को संबंध अभिधेय और प्रयोजन में बांटा जा सकता है। इसी ढंग से हरिनाम की बहुत महिमा है। इस कलयुग में केवल हरिनाम के जप के द्वारा ही अपना उद्धार कर सकते हैं। सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सब में नाम की महिमा बताई गई है। फिर भी सारे झगड़े क्यों होते हैं? सारे शास्त्रों का, चाहे वो हिंदू धर्म के हो तथाकथित, चाहे वो ईसाई धर्म के हो या इस्लाम धर्म के हो, फिर भी आपस में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि इस पूरे समाज में कोई भी हमारे पास एक आदर्श उदाहरण नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप का पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे पास एक उदाहरण चाहिए, एक प्रेरणा चाहिए, निर्देश चाहिए, तभी हमारे कृष्ण महामंत्र का पूरा लाभ उठा सकेंगे। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हमें माला पकड़ा दी जाए बोले करो, बस हरे नाम करते ही आपका उद्धार हो जाएगा। जब तक हमारे सामने कोई उदाहरण ना हो, प्रेरणा ना हो, आदेश ना हो, निर्देश ना हो, गाइडेंस ना हो, सुपरविजन ना हो, क्या हम जप का पूरा लाभ उठा सकते हैं? आज समाज में इस चीज की कमी थी, और उस समय भी कमी थी। एक ऐसे चरित्र की आवश्यकता थी जिसमें पूर्ण रूप से सच्चाई हो, और हरिदास ठाकुर वैसे चरित्र थे, जिनके क्रियाओं में, जिनके शब्दों में और जिनके विचारों में कोई भेद नहीं था। उनकी क्रियाएं, उनके शब्द, उनके विचार पूर्ण रूप से समर्पित थे हरि नाम को अपने जीवन में उतारने के लिए और हरि नाम का प्रचार करने के लिए। आप देखिए ऐसी परिस्थितियां, कितना बड़ा प्रलोभन, एक सुंदर वैश्या उनको अपने आप को समर्पित कर रही है। हम देख सकते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और सामने ये सब तो छोड़ो, एक रसगुल्ला भी पड़ा हो, हम क्या करेंगे? चलो यार इसको रखें पहले, महाप्रसाद है गोविंद, भगवान के प्रसाद की प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। हा? कोई भी विषय वस्तु होगी हम पहले उस विषय का भोग कर लेंगे, कोई मन विचलित रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका चिंतन चलता रहेगा, ये हमारी स्थिति है। लेकिन हमारे पास ये उदाहरण है हरिदास ठाकुर जी का। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से हमें सिखाया कि जप करते समय भी हमें जप के साथ, हरि नाम के साथ हमारा क्या संबंध है हमें जाना चाहिए, इसमें क्या अभिधेय है, क्या प्रयोजन है, हमारा संबंध क्या है। एक नए भक्त को जप करते समय ये जानने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षात राधा कृष्ण का संग कर रहा हूं, ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक सेवक हूं और मुझे सेवा की इच्छा करनी है, सेवा की मांग करनी है, तो ये संबंध ज्ञान है। अगर हम इस संबंध ज्ञान के साथ जप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपराध करेंगे। तो अपराध से बचने के लिए सबसे पहले संबंध ज्ञान के साथ हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अभिधेय, अभिधेय है कि जप कैसे करना है, अपराधों से बचते हुए, सभी प्रकार के अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध। और फिर प्रयोजन, जब हम हरे छिड़ंग से जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम भाव या प्रेम की स्थिति में आकर शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो इस ढंग से हरिदास ठाकुर जी पूर्ण रूप से मग्न थे और उन्होंने इस वैश्या का उद्धार किया। वैश्या का उद्धार कैसे हुआ, प्रभुपाद कहते हैं वैश्या के अंदर क्या क्या गुण थे। हालांकि वैश्या का जीवन बहुत पापमय जीवन था, लेकिन उसने क्या किया था, सबसे पहले आकर क्या किया था, तुलसी महारानी को प्रणाम किया था, एक वैष्णव को प्रणाम किया था। और उसने हरिदास जी को इम्प्रेस करने के लिए, वो भी बीच बीच में बोलती थी हे हरि ओ हरि, बोलते थे कि उनको दिखाने के लिए, हम मेरा भी इंटरेस्ट जागृत हो रहा है। कई बार हम किसी को प्रभावित इम्प्रेस करने के लिए दिखाते हैं हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, बोला हरिदास ठाकुर इम्प्रेस हो जाएंगे फिर मेरा संग कर लेंगे, तो वो भी हरि हरि का नाम ले रही थी। तो भगवान का नाम उसने लिया, तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त की, हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त की, तो उसका क्या हुआ, पूरा हृदय परिवर्तित हो गया। चैतन्य शिक्षा अमृत में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, एक प्रचारक, एक मध्यम अधिकारी के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी मासूम जीव को श्रद्धा प्रदान कर सकता है। हम लोग भी प्रचार करने जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हम उनको प्रभावित करते हैं, हम उनको श्रद्धा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत जब प्रचार करते हैं तो सीधा भाव की स्थिति पर आते हैं। सोचिए, श्रद्धा से सीधा भाव, सारी अनर्थ रिवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, सीधा भाव की स्थिति में, ये महाभागवत के प्रचार का फल होता है। तो वैश्या ने बोला मेरे लिए क्या आ गया है, हरिदास ठाकुर ने बोला तुरंत जाओ, जितना भी तुमने धन कमाया है सब ब्राह्मणों में बांट दो और सब कुछ छोड़कर इस कुटिया में आ जाओ, मैं जाने ही वाला हूं, और तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। उस वैश्या में इतनी सादगी आ गई, सारा का सारा धन उसने ब्राह्मणों में बांट दिया और अपना हेड शेव करा लिया, स्त्री हो तो भी हेड शेव करा लिया, और केवल एक वस्त्र में आई और तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करने लगे। और उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई, बड़े बड़े संत लोग उसका दर्शन करने आते थे। जब ये बात रामचंद्र खान को मालूम चली तो क्या हुआ, क्या उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया, उसका द्वेष और बढ़ गया। ये होता है, द्वेषी व्यक्ति जिसका हृदय कठोर हो जाता है उसका द्वेष और बढ़ गया, बोले कैसे हो गया, और वो और क्रूर हो गया। और उसको इस अपराध का फल क्या मिला, बताया जाता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि आप बंगाल में जाके प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु इसी रास्ते इसी गांव पे आए और वो रामचंद्र खान के घर के सामने जो आंगन था, जो कि दुर्गा मंडप कहलाता था, अपने पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु वहां रुक गए। तो जब वहां रुक गए तो सारे गण गांव के लोग आने लगे, उनको प्रणाम करने लगे। अब रामचंद्र खान की ईर्ष्या और बढ़ गई, एक वैष्णव को प्रणाम किया जा रहा है, तो वो खुद नहीं गए, अपने एक सेवक को भेज दिया एक फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता वश। और सेवक ने बोला कि आप यहां दुर्गा मंडप में मत रुकिए, ये स्थान आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आप गौशाला में रुक जाइए। नित्यानंद प्रभु ने जब ये सुना तो जोर से हुंकार मारकर हंसे, बोले अब इसका अंत आने वाला है, और गांव छोड़कर ही चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि रामचंद्र खान जमींदार था और बहुत बेईमान था,
कोई चरित्र नहीं था उसका, तो उसके ऊपर निरीक्षण करने के लिए मुसलमान अफसर आए और उन्होंने देखा इतनी गड़बड़ कर रखी है। उन्होंने क्या किया, पूरे गांव को लूट लिया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, गायों की हत्या कर दी, पशुओं को मारकर खा गए, पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जाते हैं, ये परिणाम होता है वैष्णव अपराध करने का, और ये परिणाम होता है उन लोगों का जो वैष्णव अपराधियों का संग करते हैं। इतना घोर परिणाम, ना हमें वैष्णव अपराध करना चाहिए, ना ही वैष्णव अपराधियों का संग करना चाहिए। सबका सब, सबके सब नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति भी अपराध किया था और नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अपराध किया था। लेकिन हरिदास ठाकुर जी, उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जप करना है। और हरिदास ठाकुर जी आगे चले जाते हैं, बताया जाता है कि चंद्रापुर नामक गांव था जहां पर रहते थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, जो कि कौन थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा, और साथ में मारे थे बलराम आचार्य। तो ये सब मिलकर कथा करते थे, गौर कथा, और हरिदास ठाकुर काफी गुणगान करते थे। तो उसे रघुनाथ, जो कि छोटे से बालक थे, उनके जीवन में बचपन से ही वैराग्य आ गया। तो एक ऐसी सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े पंडित लोग थे। तो मजुमदार जी हरिदास ठाकुर जी का परिचय करा रहे थे सभा से, और कह रहे थे ये हरिनाम लेते हैं। कितना हरिनाम लेते हैं, 300,000 हरिनाम लेते हैं, और हरिनाम करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और हमें इस बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। जब हरिदास ठाकुर ने कहा वास्तव में हरिनाम का ये परिणाम नहीं है कि हम पापों से मुक्त हो जाएं और बंधन से मुक्त हो जाएं, ये तो जिस प्रकार से रात के अंधकार के बाद सूर्य उगना शुरू ही होता है, तो सूर्य की एक किरण से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी ढंग से अभी शुद्ध नाम की अवस्था आई नहीं है, नाम का आभास होने मात्र से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उसी सभा में एक जमींदार था जो कि हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के यहाँ पे चीफ टैक्स कलेक्टर था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, और बहुत सुंदर था, बहुत पढ़ा लिखा था, नहीं बहुत अहंकारी था। उसने जोर से चिल्ला के बोला, अरे कैसी बात करते हो, लाखों लाखों जन्म में कड़ी कड़ी तपस्या करने के बाद भी, परम दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कोई मुक्त नहीं होता, और तुम कह रहे हो केवल ये हरे कृष्णा बोलने से उसका आभास होने मात्र से मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, और अगर नाम आभास करने से ही अगर आप कोई मुक्त नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर को गोपाल चक्रवर्ती ने क्या बोला कि अगर नाम आभास करने से मुक्ति नहीं हुई तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर जी विचलित नहीं हुए, बोले निश्चित रूप से मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, अगर नामाभास की स्थिति से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तो मैं स्वयं ही अपना नाक काट लूंगा। जब ये बात सुनी पूरी सभा में सारे भक्तों को बहुत क्रोध आया, उन्होंने गोपाल चक्रवर्ती को बिल्कुल बाहर निकाल दिया, निकल लो यहां से, और उसे नौकरी से भी उसको दरखास्त कर दिया, और देखो तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होगी, तुमने इतना बड़ा अपराध किया। हरिदास ठाकुर ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको जाने दो, ये अज्ञान है, इसको मालूम नहीं क्या था, ये हरिदास की हरिनाम की महिमा को तर्क से लॉजिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी यही गलती करते हैं, हम लोग हरिनाम की महिमा तर्क से समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा कैसे एक बार ही कृष्ण का नाम लेने से इतने पापों से मुक्ति मिल जाएगी जितने किए भी ना हो, ऐसे कैसे होगा। जैसे एक बार ही बताया गया था कि जब भगवान रामचंद्र लंका से वापस आ गए तो साथ में विभीषण भी थे और साथ में कुछ असुर भी आए। जब वापस जाना था तो उन असुरों ने बोला अब हम कैसे पार करेंगे भाई समुद्र, तो विभीषण ने बोला ठीक है इसका भी उपाय है मेरे पास। विभीषण ने कुछ लिखा, बोले ये लो कुछ लिख के दे रहा हूं, इसको हाथ में बंद करके चुपचाप चलते जाना। बोले ठीक है, वो असुर गया और जैसे समुद्र के बीच में गया सारा पानी नीचे, वो तो ऐसे लग रहा है ऐसे चल रहे हैं आराम से घुटनों तक पानी, अरे अरे वाह क्या बात है। बोले देखो तो सही इसमें फॉर्मूला क्या है, देखा खोला तो क्या लिखा हुआ था, राम, जोर से आचाले राम लिखने क्या इसमें क्या, यूं किया जैसे ही किया समुद्र के अंदर डूब गया, इसमें क्या, तो वो तर्क से क्या समझ गया, एक नाम राम से समुद्र पार कर रहा हूं। विभीषण को पूरी श्रद्धा थी, उन्होंने लिख के दिया। इसी ढंग से ये गोपाल चक्रवर्ती समझ नहीं पाया, अरे हरे कृष्णा मंत्र से लाखों लाखों साल की तपस्या के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता, बोले नाम शुद्ध नाम भी नहीं आभास मात्र से मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या हुआ इसका परिणाम, 3 दिनों में उसका कोढ़ का रोग हो गया और उसका बोले बहुत ही सुंदर नाक था अपने आप कट गया, और इसके एक्सपेरिमेंट बोलते उसके हाथ पैर ऐसे थे कमल के दल के समान, सारे के सारे गल गए और उसको कोढ़ का रोग हो गया। हरिदास ठाकुर जी ने ये नहीं कहा था इसको कोढ़ का रोग हो जाए, سب کو معلوم چلے میں کتنا مہان ہوں. ہریداس ٹھاکر نے ان کو معاف کر دیا. پرشن یہ اٹھ سکتا ہے جب ہریداس ٹھاکر جی نے ان کو کھما کر دی تو ان کو کوڑ کر رو کیوں ہو گیا؟ کیوں ہوا ایسا؟ بھگوان معاف نہیں کرتے. کئی بار ہم لوگ بھی ایسی استھتی میں آ جاتے ہیں, کوئی گھر میں اکیلا ویکتی جب کر رہا ہے, سارے گھر والے سسرال والے اس کو پیڑا دے رہے ہیں, پڑوسی پیڑا دے رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جانتے نہیں میں کون ہوں, میرے کو پیڑا دے رہے ہیں, ان کو بھی کوڑ کا روگ ہو جائے گا. یا ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اندر اندر ایسے پرارتھنا کرتے ہیں, لیکن اصلی ویشنو ہوگا وہ ایسی پرارتھنا نہیں کرے گا. حیدر صاحب نے ایسی پرارتھنا کی کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ بھکت مجھے پیڑا دے رہا ہے, اتنا میرے پہ بارے غلط باتیں کر رہا ہے, اس کو ضرور پھل ملے گا ایک دن, دیکھنا ابھی گرا ابھی گرا ابھی گرا. ہم پرتیکشا کرتے رہتے ہیں اور جب گرا دیکھا میرے کارن, میرے پتی اپرادھ کیا تھا, لیکن بھکت کے یہ وچار نہیں ہوتے. تو ہریداس ٹھاکر نے تو کھما کر دیا تھا, لیکن بھگوان کسی بھی ویشنو جو ویشنو کے پتی ہم اپرادھ کرتے ہیں کھما نہیں کرتے. اگر ہم سے کوئی ویشنو اپرادھ ہوتا بھی ہے تو کئی بار ہم لکھتے ہیں پلیز فرگیو آل مائی آفنسز, پلیز اپنے موسٹ ملسنسز پامو, پھر اس کے بعد کہتے ہیں پلیز فرگیو آل مائی آفنسز, میں نے جو بھی اپرادھ کیا کھما کر دے. وہ دوسرا بات کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرگیون. کیا اتنا کہنے ماتر سے اپرادھ کھما ہو جائیں گے؟ نہیں. پورن روپ سے اگر ہمیں اپرادھوں سے کھما چاہیے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں, دو بھاگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے کھما اور پھر انوگرہ. ہمیں اس بھکت کا انوگرہ پراپت کرنا ہے. کیول کھما مانگنے سے ہی یہ کیول اوپری اوپری ہوتا ہے. ہمیں بہت پشچاتاپ کرنا چاہیے اور اس بھکت کے چرنوں میں پڑھ کر یہ پرارتھنا کرنی چاہیے کہ مجھے کچھ سیوا دو, میں آپ کو پرسن کر سکوں. جب وہ بھکت پرسن ہوتا ہے تب اس کے ہردے سے کرپا نکلتی ہے, تب وہ بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے کہ اس کے سارے اپرادھ آپ کھما کر دیں, اور تب پورن روپ سے اپرادھ کھما ہوتے ہیں. اس لیے کیول لپ سروس کرنے ماتر سے ہی پربھو جی میں نے باپ کے پتی بہت اپرادھ کیے کھما کر دو, تو بھکت ویسے ہی ونمر ہوتے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں آپ نے کوئی اپرادھ نہیں کیے. اگر واسطہ میں ہمیں پشچاتاپ ہو رہا ہے تو ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے, یوجنا بنانی چاہیے, اس کو کیسے پرسن کروں, اس کے ہردے کو چھونا ہے, اس کے ہردے سے کرپا پراپت کرنی ہے. تب تک وہ اپرادھ پورن روپ سے مٹیں گے نہیں. لیکن اس گوپال چکرورتی نے زیادہ کچھ کیا ہی نہیں, تو اس کو کوڑ کا روگ ہو گیا, اس کا ناک گل گیا, اس کے ہاتھ پیر گل گئے. لیکن ہریداس ٹھاکر جی آگے بڑھے, وہ تو ہری نام کا پرچار کرتے ہیں, وہ پہنچے گئے. سمے بہت کم ہے, بہت سی گھٹنائیں ہیں. تو شانتی پور میں جاتے ہیں, ادویتاچاریہ جی سے ملتے ہیں. ادویتاچاریہ جی ان کے لیے گفا بناتے ہیں. شانتی پور کے پاس ایک ستھان ہے فلیا, ہے نا, فلیا جگہ ہے, اور ہریداس ٹھاکر وہاں جب کر رہے ہیں. اور بتایا تھا کہ ہریداس ٹھاکر گنگا سے میں سنان کرتے تھے, گنگا کے تٹ پہ ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے. جب ہرے کرشنا مہامن کا جب کرتے تھے تو ناچتے تھے, گاتے تھے, روتے تھے, مورچت ہوتے تھے, شیر کی طرح چلاتے تھے, پھر الٹا سیدھا کچھ بولتے تھے, جو الٹا سیدھا بولتے تھے پھر سب کچھ گہرا مطلب بتاتے تھے. تو ان کے اس بھاو ویش کو دیکھ کر سب لوگ بہت پربھاوت ہوتے تھے. جو ناستک سے ناستک لوگ بھی تھے ان کی بھی شردھا بڑھ گئی, جو براہمن ان سے دویش کرتے تھے ان کے ہردے میں ان کے پتی شردھا اتپن ہو گئی. تو بہت اچھے ڈنگ سے ہریداس ٹھاکر پرتیدن 192 مالا کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا, پورنماشی کی رات تھی اور ہریداس ٹھاکر جب کر رہے ہیں اور ان کی گفا میں تلسی مہارانی رکھی ہوئی ہے اور چندرما کی کرنیں پرویش کر رہی ہیں اور ہریداس ٹھاکر جب کر رہے ہیں, پورن روپ سے شانتی ہے. اور تبھی وہاں پر ایک بہت سندر استری آتی ہے, اور سندر استری اتنی سندر تھی کہ اس کے دیہ سے پیت ورن کی کانتی نکل رہی تھی, اور پورا کا پورا واتاورن پیت ورن کا ہو گیا, اور پورے کے پورے واتاورن میں بہت سگند پھیل گئی. اور یہ استری اتنی سندر تھی, اس نے آیا, اس نے ہریداس ٹھاکر کو پرنام کیا اور بولے کہ میں تمہارا سنگ کرنا چاہتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم سب کا ادھار کرتے ہو, تو میری بھی اچھا پوری کرو. ہریداس ٹھاکر پھر ویسا ہی کرا, تھوڑی پرتیکشا کرو, ہری نام لے رہا ہوں. ماتا جی ہم بولیں گے, وہ استری پرتیکشا کرنے لگی, ہریداس ٹھاکر جپ کرنے لگے. اس جنگ سے ایک راتری بیت گئی, دو راتری بیت گئی, تین راتری جب بیت گئی تو ہریداس ٹھاکر نے بولا کیا کروں, جب سماپت نہیں ہوتا. تو اس نے بولا, پھر وہ ان کے چرنوں میں پڑ گئی اور بولی کہ میں ساکشات مایا دیوی ہوں, سوئم بھگوان کی بہرنگا شکتی درگا ماتا ہریداس ٹھاکر کی پریکشا لینے آتی ہیں. اور ہریداس ٹھاکر اس پریکشا پہ کھڑے اترتے ہیں.
कहती मैं स्वयं माया देवी हूँ और ब्रह्मा जैसे जीव भी मुझसे मोहित हो जाते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल मोहित नहीं हुए। हम भी देखते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो माया हमें जरूर हमारी परीक्षा लेती है। माया के अनंत रूप हैं, भगवान के अनंत रूप हैं, माया के भी अनंत रूप हैं, स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, किसी भी रूप में माया आ सकती है, स्त्री के रूप में, धन के रूप में, यश के रूप में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के रूप में, भक्तों के साथ गलत फहमी के रूप में, श्रद्धा में कमजोरी के रूप में, किसी भी रूप में, संदेह के रूप में, डाउट्स, शास्त्रों में डाउट होना शुरू होना, भक्तों में डाउट होना शुरू होना, गुरु में डाउट होना शुरू होना, कोई गलत फहमी हो जाना, कोई गलत विचार बढ़ जाना, ऐसे ही भक्ति होती है, सब देख लिया मैंने, कुछ भी गलत विचार जिससे हम भगवान और भक्तों से दूर हो जाएं, सत्य से दूर हो जाएं, वो माया का रूप है। माया एक कस्टम ऑफ एजेंट की तरह है। जब एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है और उसको कुछ इन्फेक्शन हो तो उसको देश में प्रवेश करने दिया जाता है। इसी ढंग से इस भौतिक जगत में अगर वैकुंठ लोक में जाना है और हमें इन्फेक्शन हो, प्रभुपाद बोलते हैं हमारा इन्फेक्शन है मेटीरियल अफेक्शन, इस भौतिक वस्तुओं से हमारा अफेक्शन जो है वो हमारा इन्फेक्शन है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी रंच मात्र भी इच्छा छपी है और अभी रुक जाइए अभी नहीं, तो माया टेस्ट करती रहती है। हरिदास ठाकुर को भी टेस्ट करने आई माया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी खड़े होते हैं। तो फिर माया देवी कहती हैं कि अब आप कृपया करके मुझे, मैं आपसे हरिनाम लेना चाहती हूँ, आप कृपया करके मुझे हरिनाम दीजिए। मेरे पति शिवजी ने मुझे राम का नाम तो दिया है लेकिन राम के नाम से मुक्ति मिल जाती है, मैं आपसे कृष्ण का नाम चाहती हूँ जिससे कि प्रेम प्राप्त हो। मुझे मालूम है गौरांग महाप्रभु आ गए हैं, गौरांग महाप्रभु ने प्रेम की बाढ़ ला दी है, तो मैं भी इस बाढ़ में स्नान करना चाहती हूँ, मैं इस बाढ़ में डूबना चाहती हूँ। बोलती है एवन आये ना बाशे से जीव चार, कोटि कल्प कभूतर नाही का निस्तार। जो इस प्रेम की बाढ़ में नहीं डूबता है उसकी वो तो बिल्कुल निष्कृत है, और ऐसे व्यक्ति का उद्धार कल्पों कल्पों तक नहीं हो सकता, लाखों लाखों कल्पों तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जो गौरांग महाप्रभु की कृपा का लाभ नहीं उठा पाया उसके लिए क्या बचा। महावदन्य गौरांग महाप्रभु की कृपा की बाढ़ में जो नहीं डूब पाया वो क्या बचा उसके लिए, कल्पों कल्पों तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। ये कौन कह रही है, साक्षात माया देवी कह रही है, और साक्षात माया देवी हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले रही है। आप लोग बोले क्या बात कर रहे हैं, कहानी तो अच्छी है। कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति ये सुनेगा उसको श्रद्धा नहीं होगी, ये कौन सी बात हुई, माया देवी आ रही है हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले रहे, दुर्गा माता सारी दुनिया जय माता दी कर रही है, और दुर्गा माता हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेने आई है, समझ नहीं आ रही बात। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं आएगी भी नहीं, क्योंकि श्रद्धा की आवश्यकता है। बोले अब श्रद्धा कैसे उत्पन्न करेंगे, मैं बताता हूँ, कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं। बोले चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में इतनी शक्ति है, वो इतनी मधुर है कि स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी, स्वयं नारद जी, प्रहलाद महाराज, चार कुमार और लक्ष्मी जी आती हैं साधारण मनुष्य बनकर इस संकीर्तन में भाग लेने के लिए। जब ब्रह्मा जी आ सकते हैं, नारद जी आ सकते हैं, शिव जी आ सकते हैं, चार कुमार आ सकते हैं, लक्ष्मी जी आ सकते हैं, तो दुर्गा माता नहीं आ सकती, वो भी आते हैं एक साधारण स्त्री बनकर इस संकीर्तन लीला में भाग लेने के लिए, इसलिए इसमें श्रद्धा रखो। बोले ये सब तो क्या, स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण आते हैं इस हरि नाम का प्रेम का लाभ उठाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, स्वयं कृष्ण इस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पा रहे, इस प्रेम हरि नाम प्रेम संकीर्तन का आस्वादन करने के लिए स्वयं नंदनंदन कृष्ण आते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो दुर्गा माता नहीं आ सकती। बोले अब श्रद्धा हुई कि नहीं, कृष्णदास कविराज जी कहते हैं। फिर दुर्गा ये पार्वती माता क्या कहती हैं कि प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुमार। नहीं नहीं क्षमा करिए, गलत आ गया इसमें। हाँ मायादासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेमाना जन्मय। बोले इसमें क्या विस्मय है, ये तो भगवान की दासी है, मेड सर्वेंट ऑफ कृष्णा है, और ये कह रही है साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। अगर किसी को प्रेम चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं, चाहिए प्रेम तो दो कंडीशंस हैं, कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। एक तो साधु की कृपा चाहिए
और दूसरा हरि नाम लेना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जो माया देवी हैं उनको प्रेम प्राप्त होता है और हरिदास ठाकुर की कृपा मिलती है। और बहुत ही घटनाएं हैं, अब हमें अंत्यलीला में ही जाना पड़ेगा, बाकी समय नहीं बचा। अब हम उस लीला का वर्णन करते हैं किस ढंग से हरिदास ठाकुर जी ने इस जगत को वो छोड़कर गए। बहुत ही मार्मिक कथा है ये। हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, क्योंकि उनका जन्म यवन परिवार में हुआ तो इसलिए वो जगन्नाथपुरी मंदिर में जा नहीं सकते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए एक स्थान निर्धारित किया जो कहलाता है सिद्ध बुकुल। आप में से कितने लोगों ने स्थान देखा हुआ है ना। तो हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे, उन्होंने कभी चैतन्य महाप्रभु से नहीं कहा कि एक बार ले जाइए अंदर, है ना, विनम्रता थी। ना ही सनातन गोस्वामी ने इतना बोला, ना हरिदास ठाकुर ने। नामाचार्य हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु चाहते परम पुरुषोत्तम भगवान है स्वयं उनको ले जाते अंदर। हरिदास ठाकुर दूर से ही चक्र को देखते थे, परिणाम करते थे। और महाप्रभु ने कहते थे कि मैं स्वयं आपके लिए प्रतिदिन प्रसाद लेके आऊंगा। और महाप्रभु स्वयं प्रतिदिन जाते थे हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए और जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए। तो एक बार ऐसे ही महाप्रभु ने गोविंद को भेजा कि आप प्रसाद देके आओ। और जब गोविंद वहां पर पहुंचे तो देख रहे कि हरिदास ठाकुर बहुत धीरे धीरे लेट कर जप कर रहे हैं। तो गोविंद ने बोला ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। हरिदास ने बोला कि आज मेरा उपवास है। गोविंद ने बोला क्या हुआ, बोले अभी मेरा जप पूरा नहीं हुआ। अब देखिए आध्यात्मिक जीवन में संकल्प लेने का बहुत महत्व है। हरिदास ठाकुर ने पहले भी संकल्प लिया हुआ था, उस वैश्या के प्रकोप से भी बचे और माया देवी से भी बचे। अगर हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प को खरा उतरना चाहिए। बताया जाता है सभी वैष्णव संकल्प लेते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के बोलते जब वो संकल्प लेते थे उनका संकल्प पत्थर की लकीर के समान होता था, लिख दिया बस। हम लोगों का संकल्प भी लकीर की तरह होता है, मैं पानी पे लकीर होती है ना, पानी पे लकीर खींच दो कितनी देर टिकती है, बह जाती है। तो हम भी संकल्प लेते हैं, इसको एक अनर्थ बताया गया नियम अक्षमा। हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते। लेकिन आज याचना करें हरिदास ठाकुर जी से। हरिदास ठाकुर का संकल्प था, जब तक वो 192 माला नहीं कर लेते थे ना तो कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे। तो बोला अभी तो उपवास है, माला हुई नहीं, फिर भी आप महाप्रसाद लेके आए हो, इसका आदर करना पड़ेगा। थोड़ा सा उन्होंने इसको ऑनर किया और माला करनी शुरू कर दी। गोविंद ने ये जाके महाप्रभु को बताया। महाप्रभु अगले दिन आए, बोले हरिदास क्या हो गया। बोले शरीर तो स्वस्थ है, मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है। महाप्रभु ने पूछा मालूम चला व्याधि क्या है, बीमारी क्या है। बोला बीमारी ये है कि मेरा जप पूरा नहीं होता। आप देखिए किस तरह की चेतना है। शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगर कोई भक्त अपने निर्धारित माला को पूरी नहीं कर लेता तो प्रभुपाद लिख कहते हैं ही इज इन डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ। अगर हम एक निर्धारित करते हैं कि मैं 16 माला करूंगा, 8 माला करूंगा, 4 माला करूंगा और उसको मैं पूरा नहीं करता उस दिन, तो हम बहुत ही रुग्ण अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में है। यही हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा जप पूर्ण नहीं हो रहा, ये मेरी बीमारी है। ये नहीं बोला कमर में दर्द हो रही है, बहुत स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, कुछ ये समस्या वो समस्या, नहीं सीधा बोले जप नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बोले अब तुम तो नामाचार्य हो और तुमने सब कुछ स्थापित कर दिया है, अब तुम जप कम कर दो, इतने साधना की क्या आवश्यकता है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं। यहां पर बताया गया है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्ध देह तुम्ही साधन आग्रह केनकार। तुम्हारी देह तो सिद्ध है, अब तुम्हें साधना की क्या आवश्यकता है। हम लोग कई बार ही भक्ति में कुछ ज्यादा सीनियर हो जाते हैं, 15-20 साल निकल जाते हैं तो हमारी साधना थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। नए नए होते हैं तो मंगल आरती समय से पहले पहुंच जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं, पहले नहीं पहुंचे तो कुछ सजा मिलती है। अब कोई सीनियर है कोई हमें कहने वाला नहीं, हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं थोड़ी साधना ढीली कर दो, 192 माला मत करो, आपका उद्देश्य पूरा हो गया, नाम की महिमा का प्रचार हो गया, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कम कर लो, अच्छा है ना। हमारे को भी बोले निश्चित रूप से नहीं। प्रभुपाल लिख रहे हैं एक शुद्ध भक्त महाभागवत हमेशा साधना में कभी ढीलापन नहीं लाएगा, कभी भी। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं, क्या करते थे, प्रतिदिन कितने प्रणाम करते थे गोवर्धन शिला को, 1000 प्रणाम, 1000, और वैष्णवों को गिनकर, साधना थी उनकी, साधना थी। सनातन गोस्वामी वृद्ध अवस्था में भी थे, क्या करते थे, प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। अगर हमने साधना में ढील छोड़नी शुरू कर दी, ये अहंकार का लक्षण है, कॉम्प्लेसेंसी इज अ साइन ऑफ प्राइड, चलता है। अब इतना अब मेरे को स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा मैं अपने हिसाब से कुछ करूंगा। जहां हम प्रभुपाद के दिए मॉर्निंग प्रोग्राम में कंप्रोमाइज करते हैं, हमें समझिए हमारा अहंकार बढ़ रहा है। हमेशा एक कितने ही उच्च कोटि के भक्त क्यों ना हो जाए, हमें सोचना चाहिए कि मैं अभी नया नया ज्वाइन किया हूं। एक भक्त ने बोला था, हर व्यक्ति को 6 महीने बाद ये सोचना चाहिए कि मैं न्यू भक्ता प्रोग्राम ज्वाइन किया है, फिर से उत्साह, वैसे ही सब कुछ सीखना है, नया सीखना है। तो बोले नहीं नहीं ये नहीं, बोले क्या है, फिर उन्हें बोला कि मुझे, मैं हीन जाति में मेरा जन्म हुआ है, हीन मेरे कर्म है, और आप स्वतंत्र ईश्वर हो और आप पूरे जगत को नचा रहे हो, आपने मुझे भी नचाया है, आप सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो, मेरी एक इच्छा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप जल्दी ही इस जगत से अप्रकट होने वाले हो, और मैं चाहता नहीं कि आप, मैं आपको अप्रकट होते हुए देखूं, मेरी एक इच्छा है कि आपके अप्रकट होने से पहले मैं ये देह त्याग दूं। और किस तरह से त्यागूं, आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते हुए, आपके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रखकर, और अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। महाप्रभु ने जब यह सुना तो महाप्रभु ने बोला कि कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं, निश्चित रूप से तुम्हारी भी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन मेरे जीवन में जो भी आनंद है वो केवल आपके संग के द्वारा है। स्वयं रस घन रस स्वरूप भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो आनंद है वो आपके संग के द्वारा है। हरिदास ठाकुर कहते हैं ये माया मत रचो, ये माया मत रचो। कितने करोड़ों करोड़ों ऐसे भक्त हैं जिनकी स्थिति मुझसे बहुत ऊपर है, जो कि मेरे सर पे बैठ सकते हैं, और इस संसार में मैं तो एक क्या हूं, एक निकृष्ट कीड़ा हूं। हर कोई चींटी मारी जाती है तो पूरे संसार में कोई फर्क पड़ता है, चींटी के समान हूं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कृपया करके मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो अब महाप्रभु कहते हैं ठीक है, हम कल बात करेंगे। कोई ये पूछ सकता है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि मत जाओ और हरिदास ठाकुर को मैं जाऊंगा, शुद्ध भक्त तो वो होते हैं, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती, वो तो भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और उनको दिक्कत क्या है, शुद्ध भक्त कौन सा ऐसा शुद्ध भक्त है जो भगवान से बिछुड़ना चाहेगा। बोले मैं पहले जाना चाहता हूं, और भगवान कह रहे हैं रुक जाओ, बोले नहीं रुकूंगा, ये कैसे भक्त है। प्रश्न समझ में आया, समझ आया नहीं आया, नहीं आया समझ में। भगवान के शुद्ध भक्त तो भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, यहां भगवान कह रहे हैं मत क्यों जा रहे हो, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, मत जाओ। कहते नहीं मैं जाऊंगा, और फिर जाना ही क्यों चाहते हैं, भगवान का संग छोड़ना ही क्यों चाहते हैं। क्या कहना है? हमें समझना है कि भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है। प्रेम के अंदर ऐसा नहीं है कि भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, भक्त अपनी इच्छा प्रकट करता है और भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं, भगवान अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और भक्त पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम में भगवान की इच्छा को पूरा करना है तो भक्त अपनी इच्छा को दबा के रख लेता है, घुटता रहते हैं अंदर, ये मतलब नहीं है। उन्होंने बोला नहीं मेरी इच्छा है, भक्त भी स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है, प्रेम स्वतंत्रता से ही हो सकता है, भक्त पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि मेरी इच्छा है कि आपसे पहले मैं जाऊं, भगवान ने उस इच्छा पूरी की। तो उसके बाद जब अगले दिन भगवान स्नान करके आते हैं तो ये बहुत रोचक बात है, भगवान हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं, साथ में दूसरे भक्त भी हैं, स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, वक्रेश्वर पंडित हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, क्या समाचार है, व्हाट्स द न्यूज, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स द लेटेस्ट। अक्सर वैसे बोलते हैं ना, क्या समाचार भाई, क्या समाचार, क्या चल रहा है आजकल, बड़ा कैजुअली हमसे कोई बोलते हैं भक्तन वाली और व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है प्रचार, ये हो रहा है ये हो रहा है जनरली। हरिदास ठाकुर से पहले पिछले दिन क्या बात हुई, इतनी गंभीर बातें हुई और महापौर बोले क्या समाचार। तो हरिदास ठाकुर ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुमार, क्या समाचार है, तुमार कृपा, और कोई समाचार है ही नहीं। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, इस एक वाक्य से वो स्थापित कर रहे हैं कि जीव की क्या स्थिति है। जीव पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित है, कृपा पर आश्रित है, कृपा ही समाचार है, और जब कृपा प्रकट हो रही यही समाचार है, और क्या न्यूज है, बाकी कोई न्यूज नहीं है, सब ओल्ड है। भगवान की कृपा जब प्रकट होती है वही समाचार है, हम लोग प्रचार करते हैं भगवान की कृपा, ये समाचार भगवान की हम कृपा को देखें वही समाचार है। तो बोल रहे हैं प्रभु ये कृपा तो मार, यही समाचार है। तो फिर महाप्रभु समझ आते हैं, तो महाप्रभु सही भक्तों को एकत्रित करके जोर से संकीर्तन करते हैं, वक्रेश्वर पंडित संकीर्तन में सबसे आगे हैं। फिर महाप्रभु सब भक्तों को इकट्ठा करते हैं और हरिदास ठाकुर का गुणगान शुरू करते हैं। बुलाया गया जब महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पांच मुख हों, और जब वो गुणगान कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु का आनंद और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। तो गुणगान सुनते हैं, फिर हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बुलाते हैं और हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रखते हैं और जितने भी वैष्णव हैं सभी वैष्णव के चरणों की धूलि को अपने सर पे लगाते हैं। हरिदास ठाकुर का गुणगान सुनकर सारे के सारे भक्त बहुत विस्मित हो जाते हैं कि इसमें इतना इतने गुण। तो फिर सब चरणों के भक्त वैष्णव के चरणों की धूल को सर पे लगा के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे रख के, और जिस रंग से एक भवरा एक कमल के फूलों का भोग से मधुर का पान करता है, अपने दो नेत्रों से भगवान के सुंदर मुख का दर्शन करते हुए और मुख से बोलते हुए श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य ये कहते हुए हरिदास ठाकुर अपने प्राण त्याग देते हैं। तो जब इस संग से चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इतने सुंदर तरीके से एक भक्त ने प्राण त्यागे उनके प्रिय भक्त ने, तो हरि चैतन्य महाप्रभु भाववेश होकर नाचना शुरू कर देते हैं। कैसे, हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने गोद में उठाकर महाप्रभु खूब संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब संकीर्तन करते हैं। और संकीर्तन करते हुए महाप्रभु उनको समुद्र में ले जाते हैं और समुद्र में स्नान कराते हैं, और जब समुद्र में स्नान कराने के बाद महाप्रभु बोलते हैं आज से ये समुद्र महातीर्थ कहलाएगा। आप देखिए महाप्रभु स्वयं प्रतिदिन दिन में 3 बार इस समुद्र में स्नान करते थे, तब उन्होंने नहीं बोला महातीर्थ कहलाएगा, हरिदास ठाकुर के शरीर को स्नान करने के बाद बोला अब ये समुद्र महातीर्थ कहलाएगा। और फिर हरिदास ठाकुर के देह को लाया जाता है और एक गड्ढा खोद के और उसमें उनको दबाया जाता है और सभी के सारे भक्त उसमें रेत डालते हैं और साथ में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनके देह में जगन्नाथ जी के चंदन का लेप किया जाता है और इस ढंग से वो समाधि बनाई जाती है और बहुत जोर से संकीर्तन होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आनंद बाजार में जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया, और महाप्रभु अपनी चादर आगे करके सबसे प्रसाद मांगते हैं, सबसे प्रसाद मांग रहे हैं, और सभी आनंद बाजार में जितने भी दुकानदार हैं सब आगे बढ़ के प्रसाद दे रहे हैं। अब स्वरूप दामोदर सारा मैनेजमेंट है पीछे हो जाए पीछे सब सारी व्यवस्था खराब हो गई। हाँ बोले आप जाइए, महाप्रभु को वापस भेजते हैं, सब दुकानदार को भेजते हैं आप भी जाइए। 4 वैष्णवों को अपने साथ रोकते हैं और सबसे अलग अलग तरह के प्रसाद लेते हैं और फिर बहुत बड़ा फीस होता है। और फिर महाप्रभु बोलते हैं कि जिसने इस चैतन्य हरिदास ठाकुर जी के इस तिरुभाव उत्सव में भाग लिया है, या जिसने इस संकीर्तन में जिसने नाचा है गाया है, या जिसने हरिदास ठाकुर जी की समाधि में रेत डाली है, या जिसने हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव उत्सव में प्रसाद पाया है, उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। आप सोचेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, है ना, हमने हरिदास ठाकुर के तिरुभाव उत्सव में कैसे भाग लिया। कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं जो ये कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं निश्चित रूप से वो अपनी भक्ति में दृढ़ व्रत हो जाएंगे। तो ये हरिदास ठाकुर की जरा हम भी दृढ़ व्रत हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया, 22 बाजारों में पीटा गया, और ऐसा पीटा गया बहुत क्रूरता के साथ। जो पीटने वाले थे वो कह रहे थे किसी और को 2-3 बाजारों में पीटते मर जाता, और ये मर भी नहीं रहा और हंस रहा है, और हम पिटाई करें और ये क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़े विस्मित हो गए, बोले मर जाओ भाई, अगर आप नहीं मरे तो काजी हमें मार देगा। हरिदास ठाकुर ने बोला तुम्हारे बचाव के लिए मैं अपने आपको मार देता हूँ। हमने योग सिद्धि से अपने प्राणों को रोक लिया और ऐसा दिखाया वो मर गया। यानी कि 22 बाजारों में पिटाई होते हुए भी हरिदास ठाकुर के अंदर इतनी दृढ़ता थी, बोले शरीर के खंड खंड कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ये हम सबके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम हरि नाम को नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आता है, हम सबसे पहले माला बंद कर देते हैं। असली विनम्रता ये है कि कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम उत्साह पूर्वक जप करते रहे, ये विनम्रता का लक्षण है। अक्सर हम समझते हैं कि चैंटिंग करने का परिणाम विनम्रता है, लेकिन विनम्रता लक्षण है। हर परिस्थिति में हमें कीर्तन करना है, भगवान का गुणगान करना है। अभी पीछे वृंदावन में हम संकर्षण प्रभु का एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे, वो बोले कैसी परिस्थिति हो, सुख हो दुख हो पीड़ा हो सर्दी हो गर्मी हो, चैंट 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 चैंट, और हम क्या बोलते हैं, कैंट 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 कैंट। अभी बहुत परेशान हूं अभी नहीं करूंगा, अभी बहुत खुश हूं नहीं करूंगा, अभी बिजनेस सेटल नहीं हुआ नहीं करूंगा, अभी नौकरी नहीं हुई नहीं करूंगा, अभी विवाह नहीं हो रहा नहीं करूंगा, अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा नहीं करूंगा, पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, कैंट कैंट कैंट, या करूंगा रोते हुए करूंगा, परेशान होकर करूंगा, ढीला ढाला करूंगा, चैंट 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 चैंट। ये हरिदास ठाकुर जी ने हमें दिखाया, पिटाई हो रही है उनको कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही, कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही, एक्सटेसी में है वो। आप सोचेंगे ये तो लीला है, भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, उनको कैसे पीड़ा हो सकती है, हमारे को थोड़ा सा एक चींटी चल जाए, जब करते करते मच्छर काट ले, 22 बाजारों में पीटना तो दूर की बात है, एक मच्छर के काटने से हम परेशान हो जाते हैं, ओडोमॉस लगाते हैं, मच्छरदानी के अंदर बैठ जाते हैं, जप ही बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। मैं जब सूर्य का सूर्य उदय होगा मच्छर भाग जाएंगे फिर मैं जप करूंगा। हरिदास ठाकुर जप किए जा रहे हैं इतने पीड़ा में, तो ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। सुनने में कहने में अच्छी बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, लीला के लिए रूप में अच्छी बात है, लेकिन हमें जानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व आए, जो उन्होंने पार्षदों के साथ लीला की, वो लीला समाप्त नहीं होती है। हालांकि ये अंत्य लीला बताई गई है, लेकिन महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है और हम सब भक्त लोग महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग ले रहे हैं। 500 वर्ष जो पूर्व जो चैतन्य महाप्रभु ने लीला की, वो उन्होंने केवल बीज बोया है, वो केवल बीज बोया गया है, उस बीज से अभी फल अंकुरित अभी हो रहे हैं। हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर जी यमन परिवार में थे, उन्होंने हरिनाम लिया और नामाचार्य कहलाए। शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए और कितने ही मलेच्छे और यमनों को उन्होंने वैष्णव बना दिया। ये देखिए उसी बीज का एक फल है। हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया, लेकिन हम ऐसे बोले कैसे हो सकता है। आप देखिए बताया गया 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो बांग्लादेश में गर्ग मुनि थे, वैसे विषम परिस्थितियों में फंस गए थे, हरे कृष्णा महान का जप करके उन्होंने अपने आप को बचाया। कराची में उनके भाई ब्रह्मानंद को पकड़ लिया था मुसलमानों ने, और उनके यहाँ पे कनपट्टी पे पुस्त पिस्तौल के मारने ही वाले थे, बोले मरने ही वाला हूं तो क्या बोले। ब्रह्मानंद प्रभु ने क्या किया, जोर से हरे कृष्ण महान का कीर्तन किया, तो उस मुसलमान का हृदय परिवर्तन हो गया, बोले अब छोड़ देता हूं आगे से नजर मत आना जाओ। रशिया में, बोस्निया में, सराजीवो में, जहां की सिविल वॉर चल रहा था 3 साल तक, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, नहीं भक्त लोग अपना प्रचार करते रहे, कई भक्तों को भी शरीर छोड़ना पड़ा। रशिया में जब इतना टॉर्चर दिया जाता था, तो आप सॉल्टेड ब्रेड वो पुस्तक पढ़ेंगे तो सच्ची सुता प्रभु और सार्वभावना प्रभु, उनको उत्साह कहां से आता था, वो हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करते थे। तो ये लीला अभी तक चल रही है, अगर हम हरिदास ठाकुर जी के पद कमलों पर चलेंगे, उनकी हम नकल नहीं मार सकते, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने सहनशीलता और विनम्रता दिखाई है, अगर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी की हम लीलाओं की नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी क्रियाओं की चर्चा करने मात्र से ही, स्मरण करने मात्र से ही हम सारी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे जीवन में जब कोई पीड़ा आती है, कोई मुश्किलें आती हैं, दर्दनाक परिस्थितियां आती हैं, तो हमें हरिदास ठाकुर जी की इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। कितनी विषम परिस्थितियां थी, 22 बाजारों में पीटा जा रहा है, हरि नाम छोड़ दो। मुसलमान ने बोला जो हो गया सो हो गया, गलती हो जाती है, कुरान का ये कलमा पढ़ लो बच जाओगे, छोड़ दो। राजा का भी हृदय पिघल गया था, हरिदास ठाकुर से बहुत प्रभावित हो गया था, भाई कलमा पढ़ लो, एक काजी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मैं छुड़वा दूंगा, मान जाओ गलती होगी, कुरान का कलमा पढ़ लो, मान जाओ। बोले नहीं, खंड खंड कर दो, हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। इतनी दृढ़ता, तो ये दृढ़ता हमारे अपने अपने अंदर लानी चाहिए। हरिदास ठाकुर जी का हमें संतों का स्मरण करना चाहिए, और केवल नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय करने मात्र से ही हम वह बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रेम ध्वनि में हमेशा बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णविन की जय, और अलग से बोलते हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। देखिए तो इतनी शक्ति है भगवान के अंतरंग पार्षदों के नाम में, नामाचार्य जी के नाम में इतनी शक्ति है, उनके लीलाओं के स्मरण में इतनी शक्ति है, और उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं उनका हम स्मरण करके हम भी अपने जीवन में सहिष्णुता और विनम्रता विकसित करने का प्रयास करें। ये सहिष्णुता और विनम्रता कैसे आएगी कि हर परिस्थिति में हम क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस भौतिक जगत की कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो कि जीव की स्वाभाविक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार कृष्ण प्रेम के में बाधा पड़े, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, हम कर देते हैं ऐसा। नामाचार्य जी हरिदास ठाकुर ने अपने अपने जीवन से दिखाया, ऐसी कोई भी परिस्थिति हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से नहीं रोक सकते, हमें केवल इच्छा करनी है और कृपा का पूरा भंडार हमारे सामने है, हमें कृपा प्राप्त होगी। और आज के दिन हम और कृपा की याचना करें, और अपने जप में हम दृढ़ता लाएं, और अपने जप में हम मग्न होकर करें संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान का उपयोग करें, और हम जानें कि हरि नाम से हमारा क्या संबंध है, और बहुत ध्यान पूर्वक हम जप करने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर भी ये शक्ति आएगी, और जितने भी माया के प्रलोभन है उससे हम बच पाएंगे। जब भी कोई माया का हमें प्रलोभन सता रहा हो तो हमें हरिदास ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। कैसे माया देवी उनके पास आई तभी हरिदास ठाकुर जी विचलित नहीं हुए। हरिदास को बोला गया, कृष्णदास कविराज कहते हैं निर्विकार गंभीर आश्य, निर्विकार, उन्हें कोई विकार ही नहीं आता था। माया देवी सामने बैठी है, माया देवी, इस जगत की कोई भी सुंदर स्त्री की हम तुलना नहीं कर सकते, किसी अप्सरा की तुलना भी नहीं कर सकते, साक्षात माया देवी सामने बैठी है। हरिदास ठाकुर निर्विकार गंभीर आश्य, उनकी जो डिटर्मिनेशन बहुत गहरी बहुत गंभीर, तो ये सब कैसे, केवल हरि नाम के प्रभाव से। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के, हरि नाम प्रभु के, हरि नाम संकीर्तन के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।